अरमान ने नव्यांशी के बारे में बात करने के लिए वेद को कॉल किया था। वेद उसकी बातों से समझ गया था कि आखिर अरमान नव्यांशी को वापस क्यों भिजवाना चाहता है। वेद ने अपनी बरफ से उनके रिश्ते को ग्रीन सिग्नल दे दिया था और साथ ही अरमान को ये भी आश्वासन दिया था कि उसके होते हुए कोई शिवांशा को कुछ नहीं कर सकता है। वेद ने पूरा फैसला अरमान पर छोड़ दिया था। अरमान ने भी इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा था, लेकिन नव्यांशी ने उनकी बातें सुन ली थीं। नव्यांशी को अरमान के वेद को कॉल करने के बारे में पता चला तो वो गुस्सा हो गई थी और वहां से जाने का कहकर बाहर आ गई थी। वो अपने कमरे में पैकिंग कर रही थी कि इस बीच डोरबेल बजी। नव्यांशी बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोलने चली गई थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने लीला और देवेश खड़े हुए थे। लीला को अपने सामने देखकर नव्यांशी ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन लीला ने जल्दी से दरवाज़ा पकड़ लिया था। उसने नव्यांशी की तरफ घूरकर देखा और सख्त आवाज़ में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नव्यांशी को समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। सिर्फ वही वहाँ पर नहीं थी, रोहन भी उसी घर में था। एक बार के लिए नव्यांशी ज़रूर उनके सामने आ सकती थी, लेकिन रोहन का लीला और देवेश के सामने आना सही नहीं था। नव्यांशी के कोई जवाब न देने पर देवेश बोला, भाभी तुम्हें कुछ पूछ रही हैं, तुम वेद सिंह चौहान की बहन हो ना, यहाँ अरमान के घर पर क्या कर रही हो? ऐसे तो इसकी ज़ुबान बहुत कैंची की तरह चलती है और आज कुछ बोलते नहीं बन रहा है, साइड हटो। अब इस बात का जवाब अरमान ही देगा कि हमारी दुश्मनों की लड़की उसके घर पर कर क्या रही है, लीला दांत पीसते हुए बोली। जैसे ही लीला अंदर आने को हुई, नव्यांशी ने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया था और लीला को अंदर एक कदम तक रखने का मौका नहीं दिया। मेरा छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नव्यांशी ने तुनक कर कहा। क्या मतलब हम क्या कर रहे हैं? इस वक्त तुम जहाँ खड़ी हुई हो वो मेरे बेटे का घर है और जाने से पहले हम बस उससे मिलने के लिए आए थे, देवेश ने भौहें चढ़ाकर कहा। लीला यहाँ नहीं आना चाहती थी, पर देवेश की ही जिद थी कि वो जाने से पहले एक बार मनन से मिल ले। वो मनन के लिए काफ़ी सारे टॉयज़ और बाकी सामान लेकर भी आया था। अच्छा हुआ जो यहाँ पर आ गए और इस लड़की से मुलाकात हो गई। बहुत बार इसने मुझे अपने घर से बाहर निकाला है, पता तो चले कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो हमारे ही घर के लड़के के साथ रह रही है, लीला ने सिर हिलाकर कहा। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट उभर आई थी, मानो नव्यांशी से बदला लेने का उसे अच्छा मौका मिल गया हो। नव्यांशी उसके सामने से हट नहीं रही थी, तो लीला ने नव्यांशी का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ धकेलना चाहा, लेकिन उनके शोर शराबे को सुनकर अरमान बाहर आ गया था। उसने जैसे ही लीला और देवेश को नव्यांशी से बहस करते देखा, वो जल्दी से नव्यांशी के पास गया। अरमान को देखते ही देवेश ने कहा, क्या इसलिए तुमने पिछली बार हमें यहाँ से भगाया था? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अरमान कुछ कहता उससे पहले नव्यांशी ने मुंह बनाकर कहा, आप लोग एक ही सवाल को 10 बार पूछ चुके हो कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ऑफकोर्स मैं यहीं पर रहती हूँ। और वो किस हक से? क्या तुम्हारा भाई जानता है इस बारे में? क्या तुम भाई बहन एक जितने बेशर्म को जो बिना शादी के किसी के साथ भी रह सकते हो? लीला ने नव्यांशी को ताना मारा। नव्यांशी ने शिवांशा और वेद के रिश्ते की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे यही लगा कि लीला उसे और अरमान को ताना मार रही है। अब अच्छा मौका मिला है वेद सिंह चौहान से बात करने का। बहुत उसूलों और इज्जत की बात करता है, पता तो चले कि उसकी नाक के पीछे क्या हो रहा है, लीला ने सिर हिलाकर कहा और अपना मोबाइल निकालकर वेद को कॉल लगाने को हुई। देवेश भी उसी की तरफ देख रहा था, उन दोनों का ध्यान बटा हुआ था। नव्यांशी ने अरमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैं ज्यादा देर तक इनको डाइवर्ट नहीं कर पाऊंगी, जाकर रोहन को सिक्योर करो, इनके मुझे यहाँ देखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। नव्यांशी के कहने के बावजूद अरमान अपनी जगह से 1 इंच के लिए भी नहीं हिला, उल्टा वो उसकी तरफ देख रहा था। नव्यांशी ने उसे घूर कर देखा और अंदर जाने का इशारा किया, पर अरमान ने नामे सिर हिला दिया था। अरमान ने लीला की तरफ देखा, वो वेद को कॉल कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। नव्यांशी ने देखा, अचानक अरमान ने उसका हाथ थाम लिया था और लीला की तरफ देखकर सख्त आवाज में बोला, मैं नव्यांशी से प्यार करता हूँ और हम दोनों साथ में हैं। अरमान के शब्द देवेश और लीला के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। लीला ने तुरंत वेद को कॉल करना छोड़ा और उन दोनों की तरफ देखा, क्या मतलब साथ में है? क्या तुम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो? देवेश ने आंखें बड़ी करके कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस नव्यांशी किसी काम के चलते यहाँ आई हुई थी और मैंने ही उसे मिलने के लिए घर बुला लिया था, अरमान ने शांत स्वर में जवाब दिया। तुम जानते हो ना कि इस लड़की के भाई की वजह से हमारा परिवार आज कई मुसीबतों का सामना कर रहा है। तुम्हारा भाई अंकुश आज लापता है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसके पीछे वेद का ही हाथ है। उसने मनन की शादी बर्बाद कर दी और तुम्हें यही लड़की मिली प्यार करने के लिए? मैं इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देने वाला हूँ, देवेश ने अरमान को डांटना शुरू कर दिया था। अरमान ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि देवेश का ध्यान उसके और नव्यांशी के हाथों की तरफ है और उसकी आंखों के भाव यही बता रहे थे कि अरमान नव्यांशी का हाथ छोड़ दे। उसकी इस धमकी और गुस्से का अरमान पर कोई असर नहीं हुआ, उल्टा उसने नव्यांशी के हाथ को और भी कसकर थाम लिया था। मैंने आपसे मंजूरी नहीं मांगी है, आपको मेरे मामले में दखल देने का हक भी नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ कि एक वक्त में हमें आपकी जरूरत थी और आपने यही कहा था कि अब हम बड़े हो गए हैं और इस लायक हैं कि खुद को संभाल सकें, खुद के फैसले ले सकें, अरमान ने सीधे सीधे कहा। नव्यांशी हैरानी से अरमान की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर पहले वो उससे बहस कर रहा था, समय मांग रहा था और यहाँ तक कि उसने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने के बजाय वेद तक को कॉल कर दिया था। अभी कुछ ही मिनट में न जाने वो इतना क्लियर कैसे हो गया कि नव्यांशी से अपने प्यार के इजहार के बिना ही अपने घर वालों के सामने उसके लिए स्टैंड ले रहा था। इस रिश्ते को खुद इसका भाई तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, देवेश बोला। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नव्यांशी मुस्कुराकर जवाब में बोली। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर राजावत, उम्मीद है कि आप हम दोनों की शादी में बिना किसी तमाशे के शामिल होने के लिए आएंगे, वरना किसी की शादी में कुछ रिश्तेदार शामिल ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अरमान ने देवेश की तरफ देखकर कहा। देवेश ने उसकी तरफ खा जाने वाली निगाहों से देखा और फिर बिना कुछ बोले पैर पटकते हुए वहां से जाने लगा। लीला अभी तक वहीं पर खड़ी हुई थी, नव्यांशी के चेहरे पर विक्ट्री स्माइल थी। उसने लीला को पीछे की तरफ इशारा करके कहा, आपको हर बार कहीं से जाने के लिए स्पेशली क्यों कहना पड़ता है? लीला ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से देवेश के पीछे चली गई थी। वहीं उनके जाते ही नव्यांशी ने मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ देखा। अरमान के चेहरे के भाव सख्त थे। किसने कहा था दरवाजा खोलने के लिए? अरमान ने उसे घूरते हुए कहा। मुझे थोड़ी ना पता था वो खड़े हुए थे, लेकिन देखा जाए तो इसमें मेरा ही फायदा हुआ। इसी बहाने किसी ने मेरा साथ दिया और शादी तक की बातें हो रही थी, नव्यांशी ने उसे परेशान करते हुए कहा।
अरमान के चेहरे के भाव अभी भी सख्त थे और वो नव्यांशी को भी इसी सख्ती से देख रहा था। नव्यांशी ने मुंह बनाया और आंखें छोटी करके कहा, डोंट टेल मी कि तुम उनके जाने के बाद अपनी बात से मुकर जाओगे। तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अरमान राजावत। अरमान ने सिर झटका और नव्यांशी की बात का जवाब दिए बिना ही अपनी वर्कस्पेस में जाने लगा। देवेश और लीला के अचानक आ जाने की वजह से उन्हें नव्यांशी के वहां रहने का पता चल चुका था। जहां एक तरफ रोहन और नव्यांशी को बचाने के लिए अरमान को अपने दिल की बात कहनी पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ वेद और शिवांशा के कमरे में अभी तक गंभीरता का माहौल था। वेद ने शिवांशा को चेंज करने के लिए कहा था ताकि वो उसे यूनिवर्सिटी लेकर जा सके। शिवांशा तैयार हो रही थी, इस बीच वो बाहर था। वेद ने शिवांशा को अच्छे से समझाया था कि वो उनके और नव्यांशी दोनों के रिश्ते को राजावत फैमिली से संभाल सकता है। फिर भी शिवांशा अभी भी घबराई हुई थी। वे चेक करने के लिए कमरे में आया था कि शिवांशा तैयार हुई है या नहीं, लेकिन उसने देखा कि शिवांशा का ध्यान किसी और तरफ था और इस वजह से वो ठीक से अपनी साड़ी की प्लीट्स तक नहीं बना पा रही थी। वेद ने आंखें घुमाई और शिवांशा की साड़ी को ठीक करने के लिए उसके पैरों में जमीन पर बैठ गया था। जब शिवांशा का हाथ वेद के हाथों से छुआ तब शिवांशा का उसकी तरफ ध्यान गया। आप इस तरह नीचे क्या कर रहे हैं? शिवांशा हड़बड़ाकर बोली। उसने अपना हाथ वेद के हाथ से अलग करना चाहा, लेकिन वेद ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया था। शिवांशा की नजरें झुकी हुई थीं। वेद ने शिवांशा के हाथ की तरफ देखा जो हल्का कांप रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अगर तुम उनसे इसी तरह डरती रहीं तो कैसे होगा? मुझे बस बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से उनका रिश्ता नहीं बन पाएगा, शिवांशा ने धीमी आवाज में कहा। अभी अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया है और तुमने खुद ही सब डिसाइड कर लिया। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ और अभी भी यही बात कहूंगा कि किसी और के लिए मैं हमारी रिलेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ, वेद ने सख्त आवाज में कहा। शिवांशा ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वेद शिवांशा की साड़ी सही करने में उसकी मदद कर रहा था। कुछ ही देर में शिवांशा तैयार हो गई थी। वेद पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर चुका था, वो उसे लेकर यूनिवर्सिटी जा रहा था। वहां पहुंचते ही वेद ने शिवांशा से कहा, तुम्हारे एडमिशन की फॉर्मेलिटी करने के लिए तुम्हें लेफ्ट साइड वाले ऑफिस में जाना है और मैं यहाँ की अथॉरिटीज से मिलकर आता हूँ। तुम अकेले कर लोगी ना? आप मेरे साथ नहीं चल सकते क्या? शिवांशा ने घबराई आवाज में कहा। चलने को चल सकता हूँ, लेकिन क्लासेस अटेंड करने के लिए तो तुम्हें अकेले ही आना होगा। या फिर तुम ये चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ सभी लेक्चर अटेंड करूँ? वेद ने भौहें उठाकर पूछा। ठीक है, मैं कर लूंगी, शिवांशा ने जवाब दिया। वो गाड़ी से बाहर निकली और उसने चारों तरफ देखा। ये पहली बार होगा जब शिवांशा अकेले इस तरह इतनी भीड़भाड़ वाली जगह पर आई थी। उसका दिल पहले ही अरमान के कॉल के बाद बेचैन हो गया था। ऊपर से इतने लोगों के बीच उसे घबराहट होने लगी थी। वेद चाहता तो उसके साथ जा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर शिवांशा को अकेले भेजा था ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। वेद दूर से शिवांशा को देख रहा था जो एडमिशन के लिए लगी लाइन में जाकर खड़ी हो गई थी। शिवांशा के आगे लगभग 15 स्टूडेंट खड़े हुए थे। उन्हें देखकर वेद ने भौहें सिकोड़कर कहा, लगता है लंबा इंतजार करना पड़ेगा। शिवांशा को एक नज़र देखने के बाद वेद अथॉरिटी ऑफिस में चला गया था। वहां स्टूडेंट्स ने लगभग वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी और इन सब में शिवांशा अकेली साड़ी में खड़ी थी। उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। उसे यही लग रहा था कि सभी लड़के और लड़कियाँ उसे ही देख रहे हैं। पता नहीं मेरी बारी कब आएगी और मैं रोज़ यहाँ कैसे आ पाऊँगी? वेद भी न जाने कौन सी जिद पकड़कर बैठ गए हैं, शिवांशा ने झुंझलाकर कहा। शिवांशा भीड़ में आगे बढ़ते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ लीला देवेश के साथ गाड़ी में थी। नव्यांशी और अरमान के रिश्ते के बारे में जानकर देवेश बहुत गुस्सा हो रहा था। ये लड़का हमेशा मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करता है। हमारे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद इसे घटिया से घर में रहकर न जाने कौन से छोटे मोटे काम करता है और अब उस लड़की को घर ले आया है।
पता नहीं मैं भाई साहब को कैसे बताऊंगा, देवेश ने लीला की तरफ देखकर अफसोस भरे लहजे में कहा। वहीं लीला के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और वो सिर हिलाकर बोली, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी और पहली बार लड़के ने अच्छा काम किया है तो आप अपने भाई साहब की चिंता मत कीजिए, वो खुश नहीं होंगे। देवेश को लीला की बात का मतलब नहीं समझ आया, जबकि लीला के दिमाग में इस वक्त काफी कुछ चल रहा था। नव्यांश मौर्वेद ने उसका काफी बार अपमान किया था और किसने सोचा था कि नव्यांशी के जरिए ही वो चौहान फैमिली और शिवांशा के पास पहुंच जाएगी। तुम लोगों ने खुद मौका दिया है तो मैं कैसे इसका फायदा नहीं उठाऊंगी, अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना शिवांशा, लीला ने मन ही मन कहा। और अब तो वो उदयपुर जाने तक का इंतजार नहीं कर पा रही थी। अरमान का डर बेवजह नहीं था, बाकी देखते हैं कि लीला से कैसे डील की जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले चैप्टर पर मिलते हैं।